ವೈಷ್ಣವೇ ನಮೋ ಮಹಾಬಲನಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರದಾಯ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ನಾಮನೇ ಗೌರ ಗುರವೇ ಗೌರಚಂದ್ರಾಯ ರಾಯ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಾಯ ಶರಭಕ್ತಾಯ ಕ್ಷಿಪ್ತರಂಗಮಧ್ಯೆ ಕೃಪಾಮಯಿ ತ್ವಾಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪನ್ನ ಯಂ ಪ್ರಭ್ಯಜಂತಮನುಪೇತಮಪೇತಕೃತ್ಯಂ ದ್ವೈಪಾಯನ ಪುತ್ರೇತಿ ತನ್ಮಯತಯಾ ಬೃಹತ್ ಭಾಗವತ ಅಮೃತ ಕಲ್ ನಮನೆ ಬತ್ಲಾಯದ ಕಿಸ್ ಪ್ರಕಾರ ರೋಹಿ ಮೈಯಾ ಕಿ ಬಾತ್ ತೋ ದೂರ ಥಾ ಪರ ತುಮಾರ ಹೋಗಿ ಆ ತುಮಾರ ಬೋಲೇ ಆ ಮಾತಾ ಯಾರ ಪಿಛೆ ಬರ್ಷಿಲ್ಲ ಬೇಶ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಫ್ರಮ್ ರಸಾನಂದ ಹಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ವೆರಿ ಸ್ವೀಟ್ ರಶ್ ಟು ಯು ಬೈ ಐಸ್ ಔಷಧಿ ವಿಶ್ವ ಯೇಷ ಖುಬ್ ಸಾವಧಾನ আবার অন্য লোকে দিবে তুমি একটু না হয় সরে দিবে তো তোমার হলে আমার হবে আমি চোখ থেকে জল পড়ছি মানে বাতলায় থাকি মাইয়া কি দাস রুকমিণীজি বলি যে আপ আর্যপুত্র কি का हृदय कितना कोमल मक्खन से भी है आप नहीं समझते इसलिए आपने और किस प्रकार से बतलाया और आपने कैसे हमारे वस्त्रों को खींचकर हे लड़के हे विशाखे कभी गैया चराने का भान करते हुए गैयों को बुलाते हैं कभी नंद यशोदा जी को बुलाते हैं स्वप्न में ही बुलाते हैं इसको सुन करके सत्यभामा जी कुछ रुष्ट हो गई और सात्पत्न्य भाव से भूल अर्थात रुक्मिणी जी परम गंभीर है इसलिए उनको गोपियों के चरणों में श्रद्धा थी वे सात्पत्न्य भाव में नहीं रखती थी किंतु सत्यभामा राधा जी की छाया है इसलिए इनमें गुस्सा अपने भाव, इसलिए सह न सके। और बोली, ये तुम क्या कर रही हो बहन, ये अनुचित है, ये हम लोग तो नाम मात्र की घाटियां हैं, असल में हम लोग उन गोपियों की दासी की दासी की दासी भी होना हमारे लिए संभव नहीं है, जितना उनको वो प्रति कर हम लोगों को तनिक भी प्रति नहीं कर। इतना सुन करके परीक्षित जी कह रहे हैं, असक्त तत् बचा सोर गोकुल प्राण बांधव रोहिणी नंदन सुनार बल देव रुषा अप्रवीत। परीक्षित महाराज ने कहा, सत्यभामा की बात सुन करके बलदेव प्रभु जी जो गोकुल के प्राण थे, ब्रजवासियों के प्राण थे, उनके प्रिय बांधव थे, वे रोहिणी नंदन, देवकी नंदन नहीं कहा, रोहिणी नंदन श्रीमान बलदेव जी बड़े रोष के साथ में कहने, उन्होंने नहीं कहा कि उनका कोमल हृदय है सत्यभामा और रोहिणी ने रुक्मिणी जी ने। और इसको सुन करके बलदेव जी अपने क्रोध को रोक न सके और रोष पूर्वक कहने, क्योंकि वो रोहिणी नंदन है, ब्रजवासियों के बड़े प्रिय हैं, ब्रजवासी लोग अपना प्राण समझते हैं, ये भी ब्रजवासी को भी अपना प्राण समझते। बलदेव जी यहाँ रहने पर भी अपने को नंदन नंदन ही समझते थे, उनको ही पिताजी समझते थे, इसलिए जबकि नंद बाबा मथुरा में कृष्ण और बलदेव के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे और उन लोगों ने कंस को मारा और मारने के पश्चात में नंद बाबा जी की प्रतीक्षा कर रहे थे नगर के बाहर, उस समय में उस दिन तो वसुदेव देवकी और उग्रसेन इत्यादि ने उनको आने नहीं दिया, कहने लगे ये तुम मेरे पुत्र हो, किंतु दूसरे दिन ये दोनों भाई छिप करके वहां पर आए। उस समय में नंद बाबा कृष्ण को देख करके बोले, क्या तुम समझते हो कि तुम मेरे पुत्र नहीं हो, तुम दोनों भाई वसुदेव और देवकी के हो, भले ही बलदेव कह सकता है कि हाँ मैं उनका पुत्र हूं, किंतु क्या तुम यही समझते हो। कृष्ण रोने लगे और पहले ही बलदेव जी ने कहा, आप ही हमारे पिता हैं, पिता वही है जो पालन करता है, केवल जन्मदाता होने से ही पिता नहीं होता, यदि वो हमें पुत्र को कहीं है उसका पालन पोषण न करे, उसका त्याग करे, तो यदि हमारे देवकी वसुदेव जी हमारे पिता हैं ठीक है, किंतु हमारे पिता वो नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो हमारे बचपन से ही त्याग कर दिया, इसलिए मैंने ही आपको पिता के रूप में देखा, जसोदा को मैया के रूप में, रूही को मैया के रूप में देखा और मैं उनको पिता नहीं मानता। अथवा पिता कहते हैं किसको, पत्नी के पिता को भी कहते हैं और गुरु को भी पिता कहते हैं, ये सब पिता है, किंतु वो जन्मदाता ही पिता नहीं है, तो वो उन्होंने हमको त्याग किया बचपन से, इसलिए रोहिणी नंदन जो बलदेव है जो ब्रजवासियों के अंतर्गत किए हैं, बड़े रोष से बोले, शायद तत्त्वतः दैत्य अस्मान बच्चे को बलदेव जी बड़े रोष से बोलने, अरे बथुएं बहुएं, बहुएं मैंने कृष्ण की बहुएं, हम लोग अभी ब्रजवासी कृष्ण के विरह में कैसे तड़प तड़प करके मर रहे हैं, व्याकुल है शरीर, किनकी शुद्ध बुद्धि नहीं है, ये कह रहे थे परस्पर। मेरी मैया रोहिणी मैया और मैं कह रहा था, और वो लोग भी इसे सुन रहे थे, तुम लोग सुन रहे थे। तो भ्राता जो कृष्ण है अभी घर में सोए हैं पलंग के ऊपर में, और ये रुक्मिणी कह रही है कि वो रो रहे हैं और कपड़े से पीताम्बर से अपना मुख ढक करके रो रहे हैं। ये सब हमारी वंचना के लिए, हमें ठगने के लिए है, बड़े कठोर और क्रूर हैं वे, इतने क्रूर हैं कि हम लोगों ने बार बार उनसे कहा, हमारी मैया और मैंने, ब्रज के लोग, ब्रज की गायें, ब्रज के पशु पक्षी सब उनके लिए तड़क तड़क करके मर रहे हैं और इनका हृदय पर जाने, ये तो केवल हमको ऊपर से ठगने के लिए ही ऐसा कर रहे हैं। अरे व्यवहार कार्य ही कारण का प्रतीक होता है, उनके अंदर की भावना क्या है ये कैसे होगा, उसके व्यवहार से पता चलता है। यदि ये क्रूर नहीं होते, क्रूर नहीं होते, तो हमारी बात सुनकर क्या अंततः एक बार भी तो ब्रज में जाते, उनको सांत्वना दे जाते। तो हम लोग ब्रज की बातें कह रहे थे और भ्राता वहां से सुन रहा है, सुन करके ठगने के लिए मुख ढक करके रो रहा है, असल में रो नहीं रहा, वो तो अपनी चातुरी प्रकाश कर रहा है। तत्र मास दया स्थित, मैंने इसको कितनी बार समझाया, चलो हमारे साथ में एक बार देख तो आओ, उनको कुछ शंका नहीं है, तो माना नहीं हमको भेजा, और मैं वहां ब्रज में गया, 2 महीने रहा और विभिन्न प्रकार के प्रबोध वाक्यों से उनको सांत्वना देने की चेष्टा की, कैसे 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 चेष्टा की, उनके साथ में 2 महीने रहे, नंद बाबा के पास रहे, गोपियों के पास रहे, यशोदा मैया के पास में रहे, और संतरे देने की चेष्टा की, बसंत ऋतु में गए और वहां प्रबोध वाक्य माने क्या, व्यवहार से और वचन से भी प्रबोध किया। व्यवहार से मैंने मैया के पास रह करके, पिताजी के पास में रह करके वहां खाना पीना, और गोपियों को सांत्वना देना, व्यवहार से रास भी उनके साथ में किया, किस लिए, उनको संतुष्ट करने के लिए, जब भूल जाएं अपने दुख, और मैंने कहा शपथ देकर के जो वो जरूर उनको लेकर के आऊंगा, इस प्रकार से आचरण करके मैं वहां रह करके रासलीला करके उनको तरह तरह से प्रबोध वाक्य दे करके और समझाने की हमने चेष्टा की, किंतु उनकी विरह की आग और धधक उठी, मानो उनको याद कराने से और कृष्ण की स्मृति आई और तीव्र विरह के साथ में तड़पने लगी। इसलिए मैं समझा हूं कि ये भाई नहीं वहां जाएगा तब तक उनको सांत्वना नहीं होगी और विरह में तड़पेगी। इसलिए मैं आज आ रहा था क्योंकि हमको उन लोगों ने आने नहीं दिया, मैं तो जबरदस्ती शपथ करके हजार बार शपथ खाया कि हमारा विश्व में सबसे बड़ा भाई प्रिय है, उसकी शपथ दे करके मैं सौगंध खा करके उसको लेकर के ही आऊ, पाओ जल्दी समझो या मैं आई गया उनको लेकर के, तब वो कुछ संतुष्ट नहीं। और प्रतीक्षा करने लगी कि कब बलदेव जी हमारे कृष्ण को लेकर के वहां पर आए। नाउ यू हैव नॉट अंडरस्टैंड ऑल तो यू शुड बी फॉरवेशन दैट यू कैन अंडर। Don't tell so speed.
So, Sri Guru Maharaj continuing from yesterday, and the other day, we have our return. So, everyone was situated there in the house of Rukmini Devi. And Rukmini Maharaj finished speaking. She was saying that Krishna is very cruel, very hard-hearted. But Rukmini, she immediately said, oh, no, Mother, you don't know Krishna's heart. Krishna's heart is very, very soft. At night time, in his dream, what does he do? He catches that cloth and he pulls out and calls out our name, Bolita, Orade. Sometimes he calls out the names of Nanda and Yasoda. Sometimes he calls the names of the different cows. This is a dream. So, Rukmini is very broad-minded. Her heart is very deep. She is very brave. Therefore, she has so much faith and respect in the lotus feet of the yogis. But Satyabhama, she has Satyabhava. That means she has some transcendental jealousy between herself and the yogis. Therefore, she is saying, because Satyabhama, who is she? She is Radha's shadow. So Satyabhama immediately said, oh sister, what are you saying? The gopis are so qualified and we are not even able to become the dasi of the dasi, the dasi of the dasi of the gopis. So this was all spoken about the other day. So Krishna Maharaj continued, oh Mother, that time, Balaram, hearing all this, Balaram became very, very angry. Because who is Balaram? He is Brijvasi. He is the son of Rahini. So here Krishna Maharaj clarifying or using the word Rahini Nanda. He's Brijvasi. He's the son of Rahini. He's the Pandava of Gopis. And he is the Pandasaruru of Brijvasi. So when Balaram heard this, he became very angry. He could not check himself. Because he's Rahini Mandam. Therefore, he's a great of his mother. So Balaram always thinks Krishna is who? Krishna is Nandananda and Yasodhara Mandam. He also thinks Krishna is Brijvasi. Like when Krishna and Balaram went to Vrindavan, that time they wrestled with Chandramurti and killed Kamsa. But that night, Nanda and the cowherd boys were waiting just outside of Mathura. Nandababa. So that time, that night, Krishna did not return to see Nandababa. Because Devaki and Vasudeva were keeping him there. So that next day, Krishna and Balaram went there. So Krishna was asking, is it true that I am the son of Devaki and Vasudeva? So Balaram is true. Balaram can say, actually, I am the son of
Vasudeva.
Balaram can say, I am the son of Vasudeva because his father is Vasudeva. So when Krishna said that, Balaram became angry. When Krishna heard that, Balaram became angry. Oh, only staying there one day, you think that you become the son of Devaki and Vasudeva? So when Nanda Baba said this, Krishna could not answer and began to weep. So Balaram answered, oh, who is actual father? There are many, many types of father. The Guru is one type of father. The father who gives birth by Samana, he is also a father. But the real father, Balaram is saying, is one who nourishes, one who protects. So I think that you are the real father. So Balaram said, I think that you are my real father. I And then Yasodhamala, and then Himala, but also my Yamala and mothers. So this is Baladev. He has the Buddha by every Vasi. So when Bala and mother boiled the Sakyamala Rukmini, he could not tolerate. He became angry. He said, "Oh, don't you know? This Krishna is acting as the big cheetah. He's, when we said he's sleeping and covering his face with his cloth, this is just cheating. Actually, he has no love at all for the Brijbasis. The Brijbasis are dying in some way from Krishna. So this Krishna is only pretending. He is very cruel-hearted. All the cows, all the gopis, all the gopis, Nanda, Yasoda, all are dying in separation. So we cannot say that he is soft-hearted only by his words. We think in the actions that someone performs, this is proof of their character. So, has Krishna ever gone to Vrindavan? Many, many times I tried to take him, but he never went once. Therefore, we can understand he has no real love for Brijbasis. He's only pretending. So this Krishna, he is my brother, he is just a cheetah, and he is manifesting his chaturi, his cleverness, by pretending to feel separation. Balaram continued, I tried to take him many, many times to Vrindavan, but he would not agree. So Balaram said, I myself had to go to Vrindavan. And what did I do? I had to pacify all the Brijbasis. How did Balaram pacify the Brijbasis? He would take prasad with Sunanda and Yasoda. He would talk with all the Brijbasis, and in the month of Vasanti Rath, he performed Vasanti with the gopis. How? Just to pacify them, to give them santana, to make them peaceful. So Balaram went, said, I went there for 2 months, and finally I had to promise, oh, don't worry, I will be Krishna anyhow, by force. And I came here and tried again and again to take him to Vrindavan, but he never came even once. So therefore, I promised them, saying, Krishna is coming soon, soon. But what happened? Did that become peaceful? No. There would be a half of separation from Krishna increased more and more and more.
Mango Lagana. Krishna Dara. Come, hold the job. याद नहीं है
Shama bina, mano la bina, oh, mano.
बलदेव जी ब्रज के गोपियों की विरह की वार्ता को सुनाकर कृष्ण से बोले, भैया यदि तू ब्रज में नहीं जाएगा तो वहां के पशु पक्षी की पतंग कोई भी नहीं बचेगी, वो सभी तड़प करके मर जाएंगे। इसलिए कोई बहाना बना कर के भी तो आओ। क्या बहाना? जैसे दंत पत्र को मारने का बहाना बनाओ, या और कोई बहाना बनाओ, कुरुक्षेत्र का बहाना बना करके, जैसे भी हो कोई बहाना बना करके भी नहीं तो नंद बाबा यशोदा ब्रजवासियों को जीता हुआ तो उस तरह से नहीं देख सकता। मेरी बात को सुन करके वो तो कहता तो है कि मैं जाऊंगा, मैं अब चलने के लिए तैयार हो जाऊंगा, किंतु उसके हृदय का भाव अंतर और बाहरी अलग अलग है, एक नहीं है। यदि जाने की इच्छा हो तो किसी न किसी प्रकार से बहाना बना करके जाता है, किंतु क्यों नहीं जाता? जाता क्यों? इसलिए कारण के द्वारा हृदय का भाव भाव की अभिव्यक्ति होती है। जैसे हृदय में भाव होगा वैसे ही बाहर से भी व्यक्ति होगी। तो ये तो कहते कहते मैं थक गया नहीं गया, और लज्जा के मारे मैं भी मुख दिखलाने के लिए ब्रज में फिर नहीं जाऊंगा। लज्जा के कारण कौन सा मुख? नंद बाबा यशोदा गोपियों को नहीं दिखा। बड़े रोष से किंतु चित्त द्रवित होकर के इस प्रकार से उन्होंने कहा कि घर में जो सोए थे पलंग के ऊपर में रुक्मिणी के, वे सो नहीं सके और रोते रोते बिछौने से उठकर जहां ये लोग सब बातें कर रहे थे वहीं पर उपस्थित हुए। अब बड़े जोर से रोने लगे, बहुत जोर से रोने लगे। इसलिए रो रहे, ब्रज की याद आ रही, नंद बाबा की यशोदा की याद आ रही, ब्रजवासियों की याद आ रही, वहां से संदेश भी कभी कभी आ रहे। एक हंस के माध्यम से ललिता सखी उनको संदेश भेज रही है, कौन कौन रास्ते से तू जाएगा ये रास्ता भी बतला रहे हैं। उसमें रास्ते के लिए बतला रहे हैं, देखो बंसी बट की तरफ में उसको दूर से प्रणाम करके जाना, निकट में मत जाना। क्यों? वो वृक्ष कृष्ण के विरह में अब सूख रहा है, जहां की सदा पल्लवित और पुष्पित रहता था, यहां पर हजारों पशु पक्षी शरण ले रहे थे, वो क्रमशः लुप्त हो रहा है। मानो उच्च स्वर से सिर करके और देख रहा है कि कृष्ण आते नहीं रहे। भांडीर बन को भी मैं भांडीर भट्ट को देखना और उनको प्रणाम करना, इसलिए प्रणाम करना कृष्ण की सब लीलाएं हुई थी, उनको स्मरण कराना, ये याद नहीं है भांडीर बन की बातें। यहाँ पर गांधर्व विवाह हुआ, यहाँ पर की मल्ल क्रीड़ा में श्रीमती राधिका जी ने उनको परास्त किया, उनका मधुर पराजय हुआ वहां पर, ये सब उनको स्मरण हुआ। गोवर्धन की बातों का स्मरण करना, गोवर्धन के माध्यम से जाना, इस तरह से उधा इत्यादि ये सब गांव हैं, होते होते नंद गांव में जाए। इस तरह से ललिता जी क्या कहना, यदि कुछ दिन में नहीं जाओगे लौटोगे तो देखोगे कि इनका यह विरह ज्वर ही उन्हें जला करके भस्म कर देगा, उनको आग की जरूरत नहीं होगी, उनकी विरहा की उनको जला करके भस्म कर। इस तरह से उनको संवाद दे रही हैं। इस प्रकार से ये सबका स्मरण हुआ और स्मरण करके बड़े जोर से रोने लगी, जैसे बच्चे रोते हैं इस प्रकार से। बलदेव जी करें बड़ा निष्ठुर, ये दिखलाने के लिए रो रहा है, अभी भी ये रो रहा है। अब रोनी भैया देख रही है, नहीं ये झूठ मूठ का बहाना कर रहा है, किंतु कृष्ण परम अनुग्रहशाली, बड़े कृपालु है, कृपालु। क्यों नहीं गए? इसका कारण हमने पहले बतलाया, यदि उसी अवस्था में आएंगे तो जरासंध का आक्रमण हो रहा था, और यदि जाते तो वो समझता जी से यही ब्रज ही, उनके नंद बाबा, उनके पिता और माता यशोदा जी हैं, वहीं पर आक्रमण करता, वहां पर न किला न सैनिक न कोच, सारे ब्रज को नष्ट भ्रष्ट कर देते। और किस लिए? एक गूढ़ उसमें रहस्य था, क्या ब्रज में जाएंगे उनको सांत्वना मिल जाएगी? आगे ये सब बोलेंगे, गोपियों का विरह ज्वर और बढ़ जाएगा, जैसे एक तवे के ऊपर में, जलते हुए लाल तवे के ऊपर में एक बिंदु पानी छिटक दिया जाए तो उसका भेपर जो उठता है किसी को लग जाए तो फफोले उठ जाते। उसी प्रकार से गोपियों का विरह अत्यंत अधिक हो जाए, इसलिए एक दिन जाने में शांत नहीं हो, तो फिर वहीं रहे। तो जितने दिन रहेंगे गोपियों को और विरह इतना होगा कि वो कृष्ण शांत नहीं कर सके। वो देखा देखा वहां पर प्रेम सरोवर में और सब जगह होने गए, उनकी गोदी में राधिका रहते हुए भी भाभी विरह में तरछट करती हुई कृष्ण को भूल गई, अपने को भूल, मैं कहां हूं, कृष्ण कहां गए, मैं सांत्वना नहीं दे सकता। विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने यह बतलाया तो है अपनी टीकाओं में, किंतु मैं नहीं जानता था कि सनातन गोस्वामी पहले ही उसकी भूमिका रच करके उनके लिए क्षेत्र प्रस्तुत कर, मूल गुरु ये सनातन गोस्वामी, इन्हीं के भावों को हमारे जीव गोस्वामी जी या विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी या और मूल में यही भक्ति सुना सनातन गोस्वामी। तो ये सनातन गोस्वामी अपने भावों को प्रकट कर रहे हैं कि ये कृष्ण में एक ऐसी बात है, यदि ब्रज में रहेंगे गोपियों को विशेष करके दुखी दुख होगा, सांत्वना नहीं मिल सकती, क्योंकि अधरूढ़ के बाद ही मदनाख्य भाव में ऐसे दिव्योन्माद में और क्या है जल प्रजल में वो व्यस्त हो जाएंगे, उनका मरना और बचना एक समान हो जाएगा, इसलिए जान बूझ करते नहीं जाना है, बहाना करते हैं कि उसके और कुछ शत्रु हैं उन्हें मारकर तब ब्रज में आएंगे, किंतु बात ये नहीं है, ये ऊपर की बात, विरह की बात है। उनको सांत्वना तो दे ही नहीं सकते, बल्कि उनका विरह ताप और बढ़ जाएगा। इसलिए कृष्ण बड़े अनुग्रह हैं, इसलिए व्याकुल है, इसलिए वो चाहते हैं विश्व में गोपियों की महिमा का प्रचार हो। हमारे लिए कितना उनके मिलन में आनंद है और विरह में तीव्र ज्वाला है, इस चीज को जगतवासी लोग समझें, इसलिए इन लीलाओं को अपने पीछे छोड़ जाते हैं और सुखदेव गोस्वामी जैसे लोगों को भी छोड़ जाते हैं, भक्त भागवत और ग्रंथ भागवत, जैसे कि लोग उनको सुन करके इस विषय से परिचित होकर के उनको उस विषय में लोभ उत्पन्न हो, गोपियां का प्रेम कर सके, और जिसको लोभ है उसको क्या हो, उस चीज को अनुभव करें, और जो अनुभव करते हैं वो ठीक गोपियों जैसे उनके भाव हो जाए, इसके लिए कृष्ण। इसलिए कृष्ण बड़े दयालु हैं, एक ही साथ में कितने कितने कार्यों को करते हैं। प्रभु एक कार्य पर एक पांच साल बहुत से कार्यों का साधन करते हैं। इसलिए आज कृष्ण उनके विरह में अपने आंखों से आंसुओं की झड़ी लगा रहे, वो रोना बंद नहीं होता है, और गदगद स्वर से निकल नहीं रहे तो भी सावधानी के साथ में भगवान का ले रहे कृष्ण। क्यों? ये भगवान है, भगवान शब्द का यहाँ पर उल्लेख किया। भगवान होने पर भी प्रेम के वशीभूत इतने हो जाते हैं जो ये नहीं समझते हैं कि मैं यशोदा का मैं स्वयं ब्रह्म हूं, ये भूल जाते हैं। मैं यशोदा नंदन हूं, गोपीनाथ हूं, राधा ये क्यों। तो कृष्ण बोले रोते रोते, सचमुच में बलदेव भैया जो कह रहे हैं, रोणी मैया जो कह रहे हैं, अक्षरशः सत्य, मेरा हृदय वज्र का बना हुआ है, यदि वज्र का नहीं होता तो क्या होता, मेरा चित्त द्रवित हो जाता, और कहां मैं उनका विरह न सकने के कारण मैं भी मर जाता, किंतु वज्र का हृदय होने से मेरा हृदय दो टुकड़ों में विभक्त नहीं हो जाता। ब्रजवासियों ने बचपन से ही हमें पाला, और ऐसे कैसे पाला, जैसे आंख की पुतली हो, दुख में भी अपना दुख नहीं समझा, अपने दुख के लिए दुख को दूर करने के लिए कोई चेष्टा नहीं की, सब समय भगवान से प्रार्थना की, गिरिराज जी से प्रार्थना की, नारायण से प्रार्थना की, कृष्ण की रक्षा कर, इस तरह से सब समय उसी की चेष्टा में लग रही। यशोदा मैया ने कृष्ण को ठीक रखने के लिए जोगमाया पूर्णिमा के परामर्श से जाओ से राधा जी को प्रतिदिन बुलाया, वो रसोई करने के लिए गया, नहीं बुलाना चाहिए दूसरों की बहू को, किंतु किस लिए बुला रही है, लोग लज्जा की परवाह छोड़ करके, जो लोग क्या कहेंगे, उसकी सास क्या कहेगी, घर के जितने रुपए पैसे द्रव्य अलंकार सोने के हीरे जवाहरात के सब भेज दे, किस लिए, कृष्ण मेरा ठीक रहे, स्वस्थ रहे, उनका प्रेम असाधारण है, साधारण लौकिक लोगों की भांति ऐसा प्रेम का उदाहरण केवल वही है, दूसरा कोई नहीं, कोई दूसरा नंद बाबा का की क्षमता नहीं कर सकता, यशोदा मैया की, कोई दूसरा गोपियों की क्षमता नहीं कर सकता। मैंने जीवन भर जिन लोगों ने पालन पोषण किया, आपकी पुत्री की तरफ में रखी, जिन गोपियों ने, मैं उनका कोई भी साधन, उनका हित साधन नहीं कर सका, उनके भलाई के लिए, कल्याण के लिए, उनके सुख के लिए मैं कुछ ना कर सका, जब तक ये बलदेव भैया ठीक कर रहे हैं, रोहिणी मैया भी ठीक कर रहे हैं, क्रूर और निश्चित होकर के मृदुल स्वभाव के गोपियों को बहुत दुखी ही दिया है, केवल दुख दिया, वहां पर रहते हुए भी दुख दिया, और सबसे अधिक अब यहां रह करके मैं दुख दे रहा हूं, तड़प रही है, मैं सुन रहा हूं, आमीन गे दो भैया मैया जन अकुलाए, मैं आऊंगा, ये तो कह रहे हैं, संदेश भेज रहे हैं, मैया ने वहां की किसी ने संदेश भेजा, तुम्हारी गैया सब मर रही हैं, मैया भी आकुल व्याकुल होकर के मर रही हैं, नंद बाबा अब चलने फिरने में अशक्त हो गए हैं, वहां से संदेश तो देते हैं, आएंगे हम दोनों भैया, गायों की जरा रखवाली करना, गैया न मर जाए, बछड़े न मर जाए। मैं बहुत जल्दी से आ रहा हूं, किंतु आए कब? इस तरह से कह रहे हैं, मैं उन लोगों को सदा दुख दिया, अभी भी दुख दे रहा हूं। ब्रजवासियों को मेरे लिए ही कितना अघा सुख से, बका सुख से, तृणावर्त और सूतना सकटा सुख से सब कितने दुख दिए, केसी दैत्य इत्यादि से दुख सहने, उनको उस तरह से दुख दिया। और वह अब मैं वहां से आकर के उनको दुख दे रहा। भाई उद्धव, तुम सर्वज्ञ हो और मेरे बड़े पीर हो, मेरे हृदय को जानते भी हो, अब बतलाओ मैं क्या करूं। भ्रातु उद्धव सर्वज्ञ प्रेष्ठ श्रेष्ठ बद द्रुतं करवाणि की तस्मात् शोका धर्मा समुद्धर। हे उद्धव, तुम मेरे बड़े प्रिय हो और तुम वहां पर गए भी हो और तुम सब जानते हो, इसलिए हमें बतलाओ। और सर्वज्ञ हो, सर्वज्ञ माने हमारे हृदय की बात और वो गोपियों की बातों को जानने वाले, जल्दी से बोलो कि मेरे लिए क्या कर सकते हैं, मैं क्या करूं। तुम मुझे शोक सागर से उद्धार मेरा कर, समुद्धर शोक सागर से उद्धार कर। परीक्षित उवाच, परीक्षित
no, 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 no,
And he puts some water in his mouth. He's like, what will happen? The water will become very agitated. So Krishna realizes, by going to Vrindavan, he cannot pacify him. It's completely impossible. If Krishna only goes for 1 or 2 days, then the separation of the gopis and the devotees will increase even more. So then another question comes. Then if Krishna went there, he could have stayed there, but no. Krishna understands the canopy of classification of the gopis and the devotees. And that evidence is given at Pensarov, where we know what we're hearing from it. The Radharani, even despite the presence of Krishna being on her lap, Radharani was crying, oh Krishna, where are you? Where are you? So, Sri Vishwanath Chakravarti Thakur has manifested all these in his commentaries. The Guru Maharaj said, when I first think, the person who first manifested all these things in a very hidden way was Ali Guru Sri Sanat Goswami. The whole Guru for everyone is Sri Sanat Goswami. And all the rest of the Goswamis, including Sri Vishwanath Chakravarti Thakur, have all taken mercy from Sri Sanat Goswami. So Sri Sanat Goswami has manifested all these vows. So Radharani Guru is Gopamad Lakya Mahabha, Yudhiva Mahad, Kultas Prajapa, Chirajapa. So Krishna is saying, I cannot give pacification. It's not within my power. So all these reasons Krishna never returned to Vrindavan. Another reason, is Krishna is very, very merciful. Therefore, Krishna himself wanted to teach the world what is the glories of the prayer of the Vrindavasis, and especially the gopis. He wanted to show the world how much gopis feel happiness in being with Krishna and how much they feel great pain, separation from Krishna. So by Krishna staying in Mathura, all the separations of the gopis will manifest. So by hearing of those things, by hearing we can develop greed, by someone who has a greed, by hearing these things they will develop realization. And by someone who has the realization, by hearing these things, they will get direct experience and become gopis themselves. So, Krishna, so Krishna Bhagavan Tiki can perform 5 or 7 activities at one time. So Krishna, hearing the words of Baladeva on the meeting, he began to shed portions of tears, currents of tears, and his voice became choked. Yes, he started the song, he used the word Bhagavan. Because even though he's Bhagavan, the Supreme Personality of Godhead, and despite this, he's completely controlled by the prayer of the Vrindavasis. Therefore, Krishna is from Radha and Swami Bhagavan, and Krishna is thinking, I am Gopinath, Radhanath, Radhakanta. Krishna said, yes, this is true. What Baladeva and he said is completely fact. Because my heart is definitely made of thunderbolt, and my heart is harder than a stone. Because of hearing all these things, my heart is not melted. And I have not died. The Vrindavasis, how they nourish me, just like the eyelid protects and nourishes the eye. In that way, they never keep anything for themselves. All their activities were only for my happiness. The Vrindavasis always prayed to Narayan, to Govardhan, oh, please protect Krishna. Please protect Krishna. Give him a long life. Yoga Maya arranged everything. So Yogamaya would arrange for Radharani to go from Yavat every day to Navagam to cook for Krishna. At that time, how much people would criticize Radharani? Oh, she is this, she is that. But how much Radharani is always everything just for the happiness of Krishna? All the side of criticizing the Yasoda. So why are you bringing Navagam to cook for your son? But she will talk about all this just for the happiness of Krishna. So there is no other example to give at the moment of the Vrindavasis. The Vrindavasis are no example. So Krishna said, yes, Rahini Baladev said, everything is completely true. Krishna said, I promised 3 times. I will come. I know that Nanda and Yasoda are almost dying. They cannot move. And I promised them again and again. Krishna, myself and Baladev will come to protect the cows. But Krishna began to weep. Alas, I gave them 2 types of suffering. When I was here in Vrindavan, I gave them so much suffering because of my presence, many, many demons like Agasur, Bakasur, Putana, Medsakasur. When I was here, I gave them suffering because of my presence, many, many demons can again suffering through masters. And then when I left, I gave them another type of suffering because I put them in emotional separation. So Krishna began to wait, what about there? You are my nearest and dearest, Mansuru. You know everything. What do I do? Oh, good. You are Savanya. Savanya being full knowing. Because Guru, you know everything about the gopis and your masters, and you also know everything about me. Therefore, give me some solution, give me some medicine. Save me from this ocean of suffering.
परीक्षित हुआ था इसके बाद परीक्षित जी बोले नंद पत्नी प्रिय सखी देवी पुत्र वत्सल आहेगम दियतम यद्यदिश्येते तैतसु सुरतम। अभी उद्धर जी उत्तर नहीं दिया, कृष्ण ने उनसे कहा कि तुम बतलाओ मुझे क्या करना चाहिए, और वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। इतने में ही देवकी जी की टीम में बोल उठे, क्यों बोलने का कारण ये था कि उद्धव ने यही कहा कि ब्रज में चलो, तुम्हारे बीच बिना वो कोई नहीं बचे। और जब ही कृष्ण वहां पर चला गया फिर लौट नहीं सकता, कभी लौट नहीं सकता। यदि किसी को कोई काम होता है तो वहां से काम करके लौट आ सकता है, इसलिए किसी काम से आए थे कंस को मारने के लिए और अपने पिताजी को कैदी माता को कैदी से छुड़ाने के लिए, इसके बाद तो जाना चाहिए था, किंतु ब्रज में कोई काम नहीं है। क्या है, सब समय रस का स्वाद, इसलिए कृष्ण वहां जाने के बाद में काम करके लौटाएंगे ये तो संभव पर नहीं, वो समझ रहे थे। इसलिए सोचा कि यदि कृष्ण चला गया तो फिर नहीं आएगा, तो फिर हम अपना जीवन धारण कैसे करेंगे। इसलिए रोने लगी और रो करके कहने लगी, उद्धव जी को बोलने का मौका नहीं दिया, नहीं तो कृष्ण सुनकर साथ ही साथ चले जाएंगे। इले बीच में उन्होंने टोक करके कहा नंद पत्नी यशोदा प्रिय सखी, यशोदा की प्राण प्रिय सखी है ये तो बात ठीक है, किंतु साथ ही साथ पुत्र वत्सला भी है, तो इसलिए प्रिय सखी को दरकिनार कर उनको थोड़ा सा उपेक्षा करके देखा जैसे हम अपने पुत्र को तो छोड़ना असंभव है, इसलिए कुछ उनको भूल गए, उनके उनके इस दुख को नहीं देखा कि यशोदा जी अपने पुत्र के लिए मर रही है, यह नहीं सोचा हम कैसे बचे रहेंगे। यशोदा जी निस्वार्थ उन्होंने देखा कि यदि हमारे पुत्र को अपना पुत्र मान करके वो लोग सुखी हैं सुखी रहे, इसलिए कुछ कहा नहीं, बीच में तड़पती हुई मर रही हैं नंद बाबा की भी बस, किंतु ये लोगों के लिए संभव नहीं। इसलिए जब ही कृष्ण तैयार होते थे जाने के लिए ब्रज में तो ये रोने लगती थी और बस देवी भी रोने लगती थी, ब्रजवासियों का दुख कभी भी इन लोगों ने अनुभव नहीं, अनुभव करके भी ऐश्वर्य ज्ञान नहीं का, इसलिए कुछ कारण से इसलिए कृष्ण को कहीं चला न जाए, इसलिए वहां तक केवल प्रेम का आस्वादन है, इसलिए वहां से लौटेगा नहीं, समझ करके उनका हृदय विचलित हो गया और वो पहले ही कहने लगी, क्या कहने लगी, आहिदिश्यशु वो हमारे परम सुहृद हैं, जो सोदा हमारी प्रिय सखी है और वसुदेव हमारे पति के भी परम सुहृद भैया हैं, वो नंद बड़े भैया हैं, इसलिए जो कुछ चाहते हैं उनको दे दो, किंतु जाना मत, ये नहीं कहा, भीतर 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 जो कुछ देना है जो कुछ वो चाहते हैं और चाहते हैं सब कुछ दे दो, और ये उद्य रखा भीतर ही भीतर तुम बचो। तथा पद्मावती। राज्यदान पिता विमूढ़ भी महिषी जदुराशस्य वृद्धा माता मही प्रभो। ओ पद्मावती, वही पद्मावती कंस की माता, विमूढ़ दी कर्तव्य अकर्तव्य के अज्ञानी मूर्ख, राज्यदान पिता कहीं कृष्ण सारा राज्य दान, राज्यपाट धन दौलत खजाना जो कुछ है सब ब्रजवासियों को न दे दे, इसलिए बहुत भयभीत हो गए। ये जदुराज उग्रसेन की महिषी थी और परम विद्या थी और प्रभु जो कृष्ण है उनकी माता मही। उसने सोचा ये कहीं यदि राज्य दे दिया तो उद्धव यहां रह करके और हम लोग क्या करेंगे। किंतु ये मूर्ख नहीं जानती, इसलिए मूर्ख कहा ब्रजवासियों को धन नहीं चाहिए, उनको क्या चाहिए, बस कृष्ण चाहिए और किसी तरह से वो संतुष्ट नहीं हो सकते। वृंदावन में वृंदावन की संपत्ति के लिए शिवास पंडित और स्वरूप दामोदर, इन दोनों में वार्तालाप हो रही है हेरा पंचमी के दिन। वो स्वरूप दामोदर तुमको याद नहीं आती, वृंदावन में क्या है वहां के जो तरुलता है उनसे कल्पतरु है, उनसे सारी इच्छाएं पूर्ण हो सकती है, किंतु वो क्या करती हैं, उनके पत्तों से पुष्पों से मंजरियों से अपने शीर को सजाती हैं अथवा अपने पैरों में सजाती हैं। इसका अतिरिक्त तो उनको कोई भी जोड़ नहीं। यहां पर कृष्ण प्रेम से वो धनी है, वहां पर उनको क्या चाहिए, प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, प्रेम धन दिया राखो जीवन परिवर्तन महाप्रभु जी का। ब्रजवासियों को कोई चीज की अपेक्षा नहीं, ये तो राज्य से उदासीन थे महाराज नंद, किंतु जब कृष्ण पैदा हुए तो उन्होंने गोवर्धन से प्रार्थना की हमको धन दो, क्यों कृष्ण का लालन पालन करना है, उनके सब कुछ कृष्ण का पालन करने के लिए सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए ये माता मही इन विषयों को न जान करके मूर्ख सोची जे ये राज्य दे देंगे और वो सब ले लेगी। यही जैसे एक बच्चे को एक कोई फल दे दो और फिर मांगो तो देगा नहीं देगा, जो दिया उसी को नहीं देंगे, माता पिता को भी नहीं देगा, लौटाएगा, वो नहीं समझता कि इससे भी अधिक हमको दे देंगे, इसलिए ये नहीं समझ रही। अब उक्ता शरणात पूर्वम राम मात्रा अवहेलित, रोणी मैया ने इसकी बातों की उपेक्षा की थी, मूर्ख है इसके प्रेम समझती नहीं है। अब वो अपने पति के राज्य की रक्षा के लिए और चतुरता से परिहास की भांति कहने लगी, दिल लगी की बात क्या, किस लिए कहने लगे, कृष्ण भी बड़े दुखी हैं, दुखी होने से इनके दुखी होने से सारा सारे मथुरापुरी के जादव लोग भी और जादवी सभी बड़े दुखी हैं, इसलिए कृष्ण को प्रसन्न करना चाहिए, इसलिए कुछ परिहासोक्ति करनी, ऐसा मानो हंसी मजाक की बातें करने लगी जैसे कि कृष्ण का चित्त थोड़ा सा बदल जाए, इसलिए कृष्ण के लिए ऐसा करें स्वस्थ हो जाए कृष्ण, इसलिए चतुरता के साथ में सिर कंपन करती हुई रे 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 मैं सब समझ गई ऐसे कहते हुए वो कहा।
Sahib could not give an answer. But there are things weeping, she couldn't get an answer. She would definitely become afraid. Oh, if Krishna returns to Vrindavan, even for my life, I know that he will never return. Because Vrindavan has many, many responsibilities and duties. But in Vrindavan, there is no responsibility and duty. There is only very last, very moving. Krishna there is only taking prem. So if Krishna goes there for one day, he will never return. Therefore, they are not to cry. They are not to cry. If Krishna goes, then how will I protect my life? Who will maintain it? So, she's not concerned about using two words here. The Bhakti is not only his son's friend, but in one sense, she's also Krishna's mother. Therefore, there's a little clash of interests. Therefore, the Bhakti, she's thinking not of his son's benefit, if only thinking of her own benefit. So both Nanda and Yasoda are very dear to Devaki and Boswell. But Devaki has too much some self-interest. But compared to Yasoda, she has no self-interest at all. Yasoda only wants one thing. Let Krishna be happy, let Krishna stay in water. We only want his happiness. But Devaki Boswell cannot be this one without self-interest like Yasoda and Nanda. Therefore, if a children walk up, they can hear about the pastimes of Vrindavan. They can understand something that they cannot fully realize. Why? Because always there are learning to touch up a story about. So, they are thinking in a very clever way. She was saying, we can give everything to the Vrishvasis, everything to the Minnesota, but Krishna should not go to Vrindavan. That time of novelty, the mother of Kamsa, in a very joking way, a very light-hearted way, in order to change the mood of Krishna. She said, oh, Murti. Murti means foolish. Foolish lady. Oh, don't you know my mother can have a friend? Oh, if they're overstanding with everything to the Vrishvasi, they will lose the kingdom. There will be nothing left for us. Therefore, she became very afraid. That at this moment Krishna was about to give everything to Nanda Yasoda. So the Vrishvasis are not like that. The Vrishvasis have never won any wealth. What do they want? They only want Krishna. Like in the Upanishad, in Ratnayacha. That time Sri Damodara and Shivas Thakur were having transcendental argument. So Shivas Thakur was saying, oh, don't you know, just look at the glories of my daughter. Yeah, Lakshmi rides on a golden throne. But Sri Ramana is there, Sri Vasu have forgotten about the natural populace of Vrindavan. There are no trees. The trees are all copper bushes, wish fulfilling trees. But because the Vrishvasis have so much prem, they're completely self-satisfied. Therefore, they don't want anything from the copper bushes, from the copper bushes. The copper bushes can fulfill their desire. The Vrishvasis just take fruit, flowers, and fungi for the service of Krishna, and that's all they want from the copper bushes. And the stones are chitamani, the stones are wishful trees, are wishful stones, but the gopis use their stones on their toe ring to decorate the stones. Therefore, they have no need of any types of opulence. Their opulence, the Vrishvasis, is Krishna Prem. Like Manu Prem, Prem Dandina, the Luddhati Manu, that's called the Prem Dandina, the Manu said, without Prem, I am poor. So make my life successful by giving Krishna Prem. So sometimes the Vrishvasis pray for wealth, like one of the he prays to Govardhan sometimes, give me opulence, give me wealth. Why? Not in himself, but only so that I can nourish and protect my son. Just like you give a small boy a piece of fruit. Then if mother and father ask, oh, give the fruit back, the boy won't return the fruit. The boy can understand that if he gives back the fruit, the mother and father can give so much more than a piece of fruit, they cannot understand. So, in order to change Krishna's mind, that Krishna will donate everything to Nanda and Yasoda, the mountain mother comes to begin to draw the lines.
कृष्ण ने कहा कि मेरा हृदय वज्र का है जो अभी फट नहीं जा रहा। क्यों कृष्ण ने ये क्यों ने कहा कि मैं बड़ा भारी कृपालु हूं? और गोपियों पर ब्रजवासियों को के ऊपर में कृपा करने के लिए ही ऐसा करता हूं। बात भी तो ये ठीक है, कृष्ण के कृष्ण उनके उनकी प्रशंसा को चारों तरफ में फैलाने के लिए, उनकी प्रतिष्ठा के लिए और उनके लिए ही कृष्ण ही आए, जाने से उनको और भी दुख होगा। इसलिए ये नहीं कह रहे हैं कि मैं बड़ा कृपालु हूं इसलिए जानबूझ करके नहीं जाता। क्या बोले? ओ, हमारा हृदय वज्र का है, ये सुन करके भी ये सभी लोग मर रहे हैं हमारे वीरह में और मेरा हृदय फट नहीं जाता। अपने को दीनता से ऐसा कर रहे हैं, शिक्षा लो, अपनी प्रतिष्ठा कभी भी अपने आप मत करो। यदि अपनी प्रतिष्ठा अपने आप करते हो, अपनी प्रशंसा, मैं बहुत अच्छा बोलता हूं, मैं बहुत अच्छा करता हूं, तो मरने से भी अधिक है। ये लिखा है कि जो जो आदमी अपनी प्रशंसा करता है वो क्षण क्षण में मरता है। हमने बड़े बड़े वैष्णव को देखा है, सनातन गोस्वामी खुद जगन्नाथ जी के मंदिर में क्या उस रास्ते में नहीं जाते थे और कहते थे कि मैं दीनहीन मुसलमान से भी बदतर हूं, हरिदास ठाकुर से बड़ा कम होगा, किंतु कभी नहीं। इसलिए दीनहीन तारानी चाहिए, खबरदार अपनी प्रशंसा मत करो, नहीं तो वह व्यक्ति मरा हुआ के समान। ज्योतिषी महाराज जी का भी देखा, मैं हमारे भारत की नीतियों को भी देखा, उसमें सब ये चीजें हैं, खबरदार मत करो। सबसे बड़ी प्रतिष्ठा ये क्या है? सुकरीर विष्टा। सुकरीर विष्टा माने क्या? ओ, हॉग एंड पिक्स, स्टूल ऑफ हॉग एंड पिक्स। विश टू ट्राई टू वॉट टू अवॉइड अदरवाइज और भक्ति विल। इसलिए इसमें जो जो बातें हैं, कृष्ण के प्रति जिसकी जितनी ममता है उतना ही उनके लिए दुख होगा, जिसको कृष्ण के प्रति ममता नहीं है दुख नहीं होगा। देवी मैया का कृष्ण के प्रति ममता है किंतु किस रूप में है? स्वार्थी है। और यशोदा मैया की ममता है किंतु वो स्वार्थी नहीं है, वो अपना भी लूटा करके सबको दे करती, किसी प्रकार से अपने दुख को सह लेती है। इसलिए वैष्णव को ऐसा होना चाहिए। इसलिए इनका चरित्र सुन करके कुछ कुछ ग्रहण करना चाहिए हम, जो ग्रहण नहीं करता वो बेकार का सुनता है। ऐसी कथाओं को सुन करके चित्त कृष्ण में नहीं लगता है जिनका, उनको सत बात धिक्कार है, उनके श्रवण को भी धिक्कार है, कृष्ण के प्रति ममता का भी धिक्कार है। ऐसा ही भाव हम लोग हृदय में आए। नौ,
Krishna, why is saying, oh, my heart is very hard, world is not broke. Why Krishna saying that his own self, oh, I am very merciful, my heart is very soft. And here, Krishna is not going to Vrindavan, but Krishna is saying with her, not for his own happiness, but for happiness to be fasting. So here Krishna is actually manifesting his deity, his humility. So, what am I saying? We should practice this in that one life. Then why should not try to manifest one's own greatness? So, Sanjay Kamaji in here, the one who glorifies himself, kills himself at every moment. But she's Sanjay Kamaji. Such a great soul, such a wonderful person. But Sanjay Kamaji said, oh, I am almost like a Muslim. What do you speak of Hare Krishna? Oh, he was so humble. So, see, Sanjay Kamaji said, this particular life is school of power. So one should in that way try to glorify oneself. So
If anyone is glorifying, what becomes?
Kills himself.
Huh?
Kills himself.
Every moment.
Every moment.
And what I told more is to love?
Hate.
What?
Which is to restore hate. Mm-hmm. So, Devaki has so much mamata towards Krishna, but her mamata is what? Self-interest.
Thank you.